लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, विश्वास मानवीय जीवन का एक आध्यात्मिक आयाम है जो किसी भी मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें एक वृक्ष की भांति स्थिरता प्रदान करती है। चूंकि उसकी जड़ें अपने आप में मजबूती से जमीन की गहराई में बनी हुई रहती हैं। मानव अपने जीवन में किसी ईश्वर पर विश्वास ना भी करे, लेकिन वह अपने आप पर या अपने प्रिय जनों, मित्र मंडली और शुभ चिंतकों पर अवश्य ही विश्वास करता है जो उसके लिए जीवन का कारण बनते हैं, खासकर उन परिस्थितियों में जब वह जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजर रहा होता है। यदि जीवन की कठिनाइयां हमारे लिए अंधकार बनकर आती हैं, तो हमारा विश्वास हमारे लिए सदैव उम्मीदों का एक सूर्य बना रहता है जो अपने समय में बादलों के हटने पर निश्चित रूप से अपनी रोशनी से सारे जगत को प्रकाशित करता है। श्रोताओ, पास्का के दूसरे रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का सार विश्वास है। विश्वास वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं से जुड़े रहने में मदद करती है। यह हमारे जीवन की उम्मीदों को धूमिल होने नहीं देती है। विश्वास हममें क्षीण होने वाली शक्ति को पुनः नए जोश और आशा से भर देती है। अतः आइए हम सुसमाचार का श्रवण करते हुए अपने विश्वास की परख करें। हमारा विश्वास जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में कितना गहरा है? क्या हम जीवन के कठिन परिस्थितियों में सहज ही निरुत्साहित हो जाते हैं? हम अपने विश्वास के जीवन को किन किन लोगों के द्वारा मजबूत होता हुआ पाते हैं?
प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय बारहों में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो।
श्रोताओ, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमें भी अपने पुनरुत्थान की खुशी, प्रेम और शांति से भर दे, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति को देख सकें, उन्हें पहचान सकें और अपने कार्यों के द्वारा उनकी महिमा और स्तुति कर सकें। श्रोताओ, पास्का काल के इस अवधि में हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का मृतकों में से जी उठने की खुशी मना रहे हैं। हम अपने जीवन में जो प्रेम, शांति और खुशी का अनुभव करते हैं, वह हमारे लिए मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से कृपा स्वरूप आता है और इसे हम अपने दैनिक जीवन में यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने के द्वारा अनुभव करते हैं। यीशु ख्रिस्त में हमारा विश्वास हमें सच्ची खुशी, प्रेम और शांति से भर देता है, जो हमारे द्वारा कमाए गए धन दौलत और शोहरत से मिलने वाली क्षणिक खुशी और शांति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि ये हमारे लिए दिव्य ईश्वरीय कृपाएं हैं। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास के कारण हम अपने जीवन में व्याप्त खुशी, शांति और प्रेम को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते, वरन हम इसे अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा अपने दैनिक जीवन में दूसरों के संग साझा करते हैं। श्रोताओ, प्रेरित चरित्र से लिया गया आज का पहला पाठ इसे हमें प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय के जीवन में एक सुंदर साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करता है। पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास के कारण ख्रिस्तीय समुदाय एक मन और एक हृदय में संयुक्त था, जहां सभी अपने जीवन की सारी चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। विश्वासियों का जीवन प्रेम में एक दूसरे की सेवा और चिंता करने की बात कहती है, जैसा कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन में किया। प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में विश्वास की अभिव्यक्ति को हम प्रेम पूर्ण ठोस कार्यों में पाते हैं। लोगों के पास जो कुछ था वे उसे बिक्री कर शिष्यों के पास जमा करते और सभी चीजों को सभी लोगों की जरूरत अनुरूप बांटा जाता था। किसी का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि सभी चीजों में सबों का साझा था। इस भांति प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, क्योंकि वे अपनी जरूरतों के अनुरूप चीजों को आपस में बांटा करते थे। श्रोताओ, एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान अर्थात बांटने का मनोभाव हमारे जीवन में केवल तब संभव होता है जब हम एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को मजबूती से अनुभव करते हैं। जब हम एक दूसरे को भाई बहनों के रूप में देखते, तब हम अपने स्वार्थ की भावना से ऊपर उठते हुए और अपनी चीजों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। श्रोताओ, यह हमें आज के दूसरे पाठ से संयुक्त करता है, जहां हम ईश्वर के द्वारा मिली प्रेमपूर्ण आज्ञाओं का अनुपालन करने हेतु बुलाए जाते हैं, जो हमें दूसरों के समक्ष ईश्वरीय संतान होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यीशु ख्रिस्त ने अपने पिता के प्रेमपूर्ण आज्ञाओं का पालन किया और वे हमें भी वैसा ही करने को कहते हैं, क्योंकि आज्ञा पालन के द्वारा ही हम प्रिय संतान होने का प्रमाण देते हैं। आज्ञा पालन हमारे विश्वास को दिखलाता है, जिससे हम पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में व्यक्त करते हैं। श्रोताओ, विश्वास, प्रेम और कार्य तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। आज का सुसमाचार हमारे लिए पुनः इन तीन बातों की चर्चा करता है, जिसे हम अविश्वासी प्रेरित थॉमस के जीवन में पाते हैं, जो अपने भाइयों की बातों में एकदम विश्वास नहीं करता, लेकिन पुनर्जीवित यीशु के दिखाई देने पर वह अपने विश्वास प्रेम और कार्य को ठोस रूप में यह कहते हुए व्यक्त करता है, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। श्रोताओं, कोरोना महामारी के इस समय में हम भी कई रूपों में अपने विश्वास के जीवन को डगमगाता पाते हैं। इस विकट परिस्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कठिन हो गया है और सब चीजें व्यर्थ हो गई हैं। कोरोना की स्थिति से हमें कब मुक्ति मिलेगी हम नहीं जानते, लेकिन हमें अपने विश्वास में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु पर विजयी हुए यीशु ख्रिस्त निश्चित ही हमें इस संकट से बाहर निकलने में मदद करेंगे। विश्वासों की सहायिका माता मरियम से आइए हम निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में अपनी उम्मीदों, अपने विश्वास को पुख्ता बनाए रखने हेतु मदद करें, जिससे हम विचलित हुए बिना विश्वास के साथ अपने जीवन के कठिन डगर में आगे बढ़ने के योग्य सदा बन पाए।
उठे प्रभु यीशु का प्रचार हम करेंगे, करते रहेंगे। जी उठे प्रभु यीशु का प्रचार हम करेंगे, करते रहेंगे। जी उठे प्रभु यीशु ही हमारा शुभ समाचार, हमारा शुभ समाचार। क्रिस्त की जय, क्रिस्त की जय, क्रिस्त की जय। जी उठे, जी उठे, मेरे प्रभु पर जीते। जी उठे, जी उठे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने दक्षिणी कोलंबिया में हिंसा के शिकार लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। उन्होंने एक तार संदेश भेजकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। संत पापा की ओर से वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्र परोलिन ने कोलंबियाई कैथोलिक धर्मदक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष को एक तार संदेश भेजकर कहा कि संत पापा ने कोलंबिया के दक्षिणी क्षेत्र की नाटकीय स्थिति की याद की है। पोप फ्रांसिस ने हिंसक घटना की निंदा की है और उन लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया है जो कोलंबिया के दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बहुत अधिक पीड़ा के बीच रह रहे हैं। पत्र में उन्होंने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सामाजियों और लोक धर्मियों की प्रतिबद्धता की याद की है, जिन्होंने पूरे प्रांत में शांति स्थापित करने का अथक प्रयास किया है। पिछले कुछ दिनों में देश के दक्षिणी भाग में कई हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। 26 मार्च को एक बम विस्फोट में दक्षिण पश्चिमी कोलंबियाई के कोरिंथ में दर्जनों लोग घायल हो गए थे। कोलंबिया में आदिवासी समुदाय के प्रतीकात्मक स्थल पर टाउन हॉल के सामने एक कार बम विस्फोट हुआ था। यह क्षेत्र हाल के दशक में फार्क सशस्त्र समूह और गिरोह का गढ़ है जो नशीली पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है। तोरबियो में फादर अल्वानो उर्क्वे कोलंबिया के पहले आदिवासी पुरोहित थे जिनकी हत्या 1984 में हुई थी। वैटिकन के कोविड 19 आयोग ने एक वेबिनार के माध्यम से ऋण माफ करने के अभियान का समर्थन करते हुए अफ्रीकी देशों के ऋण को माफ कर दिया है। समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद ने 8 अप्रैल को एक बयान जारी कर कहा है कि वह वैटिकन कोविड 19 आयोग के साथ मिलकर अफ्रीकी देशों के लिए ऋण माफी के अभियान का समर्थन कर रहा है। इस पहल को बुधवार 7 अप्रैल को एक वेबिनार में जारी किया गया जिसका आयोजन समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठ परिषद एवं वैटिकन कोविड 19 आयोग ने कारितास अफ्रीका, अफ्रीका एवं मडागास्कर कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन, अफ्रीका एवं मडागास्कर के जेसुइट सम्मेलन और पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका की महिला धर्म सामाजिकों के संघ के सहयोग से किया था। घाना में कुमासी के महाधर्माध्यक्ष एवं कारितास अफ्रीका के अध्यक्ष गैब्रियल जस्टिस याओ अनोकिया ने सत्र की शुरुआत करते हुए कहा यह समय गरीबों एवं कमजोर लोगों की ओर देखने, जांचने और काम करने का समय है। कठिनाई और संकट की घड़ी में हम एकजुटता में ईश्वर के हाथ को देखते हैं। परिषद के सचिव एवं वैटिकन कोविड-19 आयोग के सदस्य फादर अगुस्तो जंपिनी ने कहा, यह सिर्फ तकनीकी या एकजुटता का सवाल नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। यह न्याय का सवाल है, यह अंतर पीढ़ी के न्याय का सवाल है, क्योंकि हम अपने बच्चों एवं भावी पीढ़ी को हमारी गलतियों और आध्यात्मिक न्याय के प्रभावों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। संत पापा फ्रांसिस ने दिव्या करुणा रविवार के पूर्व विश्वासों को संबोधित करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा, प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम अपनी गिरी हुई स्थिति को लगातार सोचते रहें, वे चाहते हैं कि हम उनकी ओर देखें। हमारे पतन में वे हमें उन बच्चों के रूप में देखते हैं जिन्हें उठाने के लिए मदद की जरूरत है। हमारी दयनीय स्थिति में वे हमें उन बच्चों के रूप में देखते हैं जिन्हें करुणामय प्रेम से प्यार करना है।
संत पापा फ्रांसिस ने एडिनबर्ग के राजकुमार फिलिप की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को तार संदेश भेजा। संत पापा फ्रांसिस एडिनबर्ग के राजकुमार फिलिप की मृत्यु की खबर सुनकर दुखी हैं। वे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और शाही परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित तार संदेश में संत पापा ने लिखा कि वे एडिनबर्ग के राजकुमार फिलिप की महारानी के प्रति निष्ठा और परिवार के प्रति वफादारी, देश की सार्वजनिक सेवा में विशिष्टता एवं आने वाली पीढ़ी के भविष्य निर्माण एवं शिक्षा प्रबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करते हुए उन्हें मुक्तिदाता प्रभु येसु के करुणामय प्रेम के सुपुर्द करते हैं। संत पापा फ्रांसिस आप पर और सभी विलाप करने वालों पर पिता ईश्वर की सांत्वना और शांति के आशीर्वाद की कामना करते हैं। विदित हो कि 99 वर्षीय प्रिंस फिलिप 9 अप्रैल को सुबह विंडसर कैसल में शांति से अपनी अंतिम सांसें ली और सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। प्रिंस ने 16 मार्च को विंडसर कैसल में लौटने से पहले 1 महीने तक अस्पताल में संक्रमण का इलाज करवाया और दिल की सर्जरी करवाई थी। एडिनबर्ग के राजकुमार ने ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक अपनी सेवा दी। ग्रीस और डेनमार्क के राजकुमार के रूप में फिलिप का जन्म हुआ था और 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी करने के बाद उन्हें यूनाइटेड किंगडम का राजकुमार बनाया गया। प्रिंस फिलिप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वेस्टमिंस्टर के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल विंसेंट ने कहा, दुख और नुकसान के इस क्षण में मैं महारानी के वफादार पति प्रिंस फिलिप की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही मैं महारानी और सभी शाही परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कार्डिनल ने कहा, हमें राजकुमार फिलिप की अनुपस्थिति खलेगी। उनका जीवन दृढ़ता से भरा हुआ था। वे दृढ़ निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे चिर शांति को प्राप्त करें। वे 2014 में कासा संता मार्था में संत पापा फ्रांसिस से मिलने के लिए महारानी एलिजाबेथ के साथ आए हुए थे और कल करुणा रविवार को संत पापा फ्रांसिस पिछले साल की तरह सासिया के सांतो स्पिरितो गिरजाघर में पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे। कल 10:30 बजे कोविड के विरोधी नियमों का अनुपालन करते हुए करीब 80 विश्वासी पवित्र मिस्सा में भाग लेंगे। पवित्र मिस्सा के अंत में संत पापा तीर्थालय से स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।